ओम शांति। हम सबके सामने उपस्थित हैं आदरणीय रजनी बहन जी। आप 30 वर्षों से ज्ञान में आई और 29 वर्ष से आप समर्पित जीवन जी रही हैं। वर्तमान समय जापान, फिलीपींस, हांगकांग, ताइवान आदि देशों में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं आदरणीय रजनी बहन जी।
ओम शांति। आज हम सभी यहाँ बैठे हैं बाबा के घर शांति वन में। एक दो दिन के बाद तो बाप दादा से मिलेंगे ही, लेकिन बाप दादा ने हम सभी को गॉडली स्टूडेंट बना दिया है, स्टूडेंट ईश्वरीय विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को एक ही लगन रहती है, वो होती है स्व उन्नति। तो हमारी लाइफ बाबा ने कौन सी बनाई है? ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। हमारा स्कूल कितने बजे खुलता है? सुबह 3:30 बजे खुल जाता है। दूसरे स्कूल तो 7 बजे खुलते होंगे, 8 बजे खुलते होंगे। हमारा स्कूल सबसे जल्दी खुल जाता है। आप खुश हैं? सुबह सुबह 3:30 बजे हम उठते हैं और बाबा हमारा टीचर है, वो हमको योग की ड्रिल भी कराते हैं। तो पहला साधन हमारी उन्नति का है कि अपनी विद्यार्थी जीवन की जो महत्व है उसको याद रखना, कि मेरे जीवन का जो विशेष उद्देश्य है वो है उन्नति करना, स्व उन्नति करना। तो पहली जो हमारी उन्नति शुरू होती है वो होती है सुबह से 3:30-4 बजे जब हम उठते हैं तो वो हमारी उन्नति है, और नहीं उठते हैं तो कितने दिन पीछे चले गए। जैसे रोज स्कूल जाओ, एक दिन नहीं जाओ तो मान लो आप कितने दिन पीछे, कितने सालों पीछे वाला संस्कार जो उत्पन्न हो गया, जिसने बाधा डाल दी, ना उठने दिया सुस्ती ने, तो कितने समय पीछे वाला संस्कार जो उत्पन्न हुआ वो उन्नति नहीं है, वो क्या हो गया? अवनति, पीछे चले गए। तो इसलिए योग में बैठना हमारी उन्नति है, उठना हमारी उन्नति है। मान लो हम योग में बैठते हैं और अपने मन को अलर्ट रखते हैं, वो उन्नति है, स्व उन्नति है। जैसे हम अपने को दुआएं दे रहे हैं और बाबा खुश होता है जब देखता है मेरा बच्चा रोज की दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक सब प्रकार के नियम मर्यादाओं पर चलता है, तो बाबा हमको दुआ दे देते हैं, खुश हो जाता है ना बाबा। क्योंकि लौकिक में भी आप देखो, माँ बाप किस बच्चे से खुश होते हैं? जो बच्चा स्कूल जाने के टाइम खुशी से जाता है, थोड़ा भी सुस्ती करे तो माँ बाप उसको उठाते रहते हैं, और फिर मूड उसका खराब हो जाए तो भी माँ बाप खुश नहीं है उससे। अपनी इच्छा से, अपनी हिम्मत से, अपनी इनिशिएटिव से, अपनी प्रेरणा से जब वो पुरुषार्थ करता है बच्चा, उसको उन्नति, उसको उन्नति कहते हैं हम लोग, प्रोग्रेस कहते हैं। तो ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन का महत्व ऊंच तब बनता है जब हम उन्नति करते हैं। विद्यार्थी तो बहुत हैं, लाखों विद्यार्थी हैं, लेकिन उन्नति किसकी हो रही है रोज? हाँ, जिसको मन में लगन है कि मुझे अपने को बदलना है। क्योंकि बाबा ने कहा, ये तुम्हारा जीवन जो है, ये जो ईश्वरीय जीवन है, इसमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है और पांच बातें हैं इस ईश्वरीय जीवन में। एक है पढ़ाई, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में लड़ाई, लड़ाई भी कर रहे हैं। किससे? माया से लड़ाई भी कर रहे हैं और चढ़ाई भी कर रहे हैं। चढ़ाई माना जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो रोज हमारी चढ़ाई भी हो रही है। यदि हम ऊपर चढ़ रहे हो पहाड़ पर और पीछे देख लें तो एकदम गिर जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि हमारी चढ़ाई भी है, हम चढ़ती कला में हैं, लेकिन यदि पास्ट की बातें सोच लेते हैं मन में, मन पीछे की बातें सोच रहा है, तो वो हमारी गिरती कला में मन चला गया, गिर गए। तो इसलिए चढ़ाई भी है, तो पढ़ाई भी है, लड़ाई भी है, माया के साथ युद्ध भी है, तो इसलिए हम योद्धा भी हैं। तो ईश्वरीय जीवन में विद्यार्थी भी हैं, योद्धा भी हैं। योद्धा माना जो युद्ध के मैदान पर सदा अलर्ट रहे। आप योद्धा हैं या खाली विद्यार्थी हैं? योद्धा हैं, अलर्ट। योद्धा को ध्यान रहता है कि युद्ध में मेरे को कोई हार ना दे। उसको ये ध्यान रहता है कि सदा ही मुझे यूनिफॉर्म में रहना है, अलर्ट रहना है। कभी किसी का हमला हो तो उसी समय एवर रेडी बनकर अपने देश को बचाना है। हाँ, उसका ये मतलब होता है ना योद्धा का। तो हम भी युद्ध के स्थान पर हैं, माया से युद्ध करते हैं। तो माया हमारे मन में जो पुरुषार्थहीन की बातें हैं ना, वो डालती है हमारे मन में। सुस्ती की बातें डालेगी, अलबेलेपन की बातें डालेगी, ये है माया। लेकिन हमको परखना है उसको कि ये माया है, लेकिन मेरा उद्देश्य है उन्नति करना। तो जब हम अपना परख लेते हैं माया को, तो परख कर हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि नहीं परखेंगे, हम कहेंगे, माया कहेगी सो जाओ, हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक है, बहुत थका हुआ हूं, सो जाता हूं। तो ये माया के साथ हमने साथ दे दिया। लेकिन माया को परख कर उससे, उस पर जीत पाकर हम आगे बढ़ गए, उसको हम उन्नति कहते हैं। तो दो एनर्जी काम कर रही हैं, एक है बाबा की एनर्जी, दूसरी है माया की एनर्जी। तो माया को आप सब जानते हैं, माया कौन है? अपनी ही हमारी कमी और कमजोरी का नाम माया है। हमारी ही कमी, हमारी कमजोरी, द्वापर युग, कलयुग, जो जीवन हमने जिया विकारों वश, जो कमजोरी है हमारे अंदर विकारों की, नेगेटिव सोचना, पास्ट का सोचना, या मन व्यर्थ सोचे और कई प्रकार के विकल्प चले, ये सब माया। तो बाबा कहते हैं कि ये याद रखो कि हम योद्धा हैं, माया से लड़ने आए हैं, कमजोरी से हमको लड़ करके पार होना है। और तीसरा है कि हमारे ईश्वरीय जीवन में हमारी उन्नति होती है जब हम मुरली का विचार सागर मंथन करते हैं। जैसे बाबा मुरली सुनाते हैं सुबह, फिर हम अलग समय लेकर व्यक्तिगत रूप में बैठकर उस पर विचार करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, उसको फील करते हैं, बाबा के वाइब्रेशंस को, बाबा की मुरली को हम ज्यादा समझते हैं। वो जो हम अलग टाइम देते हैं अपने विचार सागर मंथन के लिए, उसको हम उन्नति कहते हैं। क्योंकि सुन तो सब रहे हैं, लेकिन जब हम अलग बैठ करके उस पर गहराई से सोचते हैं, तो जैसे हमने अपने व्यक्तिगत, अपने को समय दिया अपनी ही उन्नति के लिए। जैसे स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ने के बाद क्या करते हैं, घर में जाकर घर का काम उनको मिलता है ना, होमवर्क कहते हैं जिसको, वो करते हैं बैठ के। सभी स्टूडेंट करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, घर में जाकर के वो लोग अपना होमवर्क करते हैं। तो ऐसे बाबा की मुरली तो हम पढ़ते हैं स्कूल में बैठकर, सुनते हैं, लेकिन फिर बाद में बैठकर के हम उस पर होमवर्क करते हैं, तो उसको हम कहते हैं उन्नति। तो पहला है योग, योग करना, अलग समय निकाल करके भी योग करना। फिर है मुरली का विचार सागर मंथन करना। फिर तीसरा है, हम उन्नति किसको कहते हैं, सेवा को भी उन्नति कहते हैं ना? तो सेवा में हमारे योग्यताएं यूज हो और सेवा में हम रेडी रहें, कोई भी सेवा में, तो उसको भी हम उन्नति कहेंगे ना? क्योंकि हमने तो पढ़ लिया, हम तो खुश हो गए, लेकिन जब हम सेवा करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जो पढ़ाई की वो यूज हो रही है, हमारी पढ़ाई, वो हमारी पढ़ाई नजर आ रही है कि हमने कितने तक पढ़ा है, वो जब हम सेवा की फील्ड पर आते हैं, व्यवहार में आते हैं, संपर्क संबंध में आते हैं, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा मेरे जीवन में हुआ है वो नजर आता है। नहीं तो हम यहां तक रखेंगे पढ़ाई, हाँ हम लोग अच्छी पॉइंट्स भी रिवाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में कितनी हमारी पढ़ाई यूज हो रही है, वो जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पता चलता है कितना हमारे में परिवर्तन आया है इस पढ़ाई से। तो हम ईश्वरीय विद्यार्थी भी हैं, योद्धा भी हैं, और तीसरा हमको ये भी सोचना है कि हम बाबा के बच्चे भी हैं। बाबा के बच्चे बनना बहुत आसान है या नहीं आसान? जिस दिन हमने महसूस किया बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं, अपनापन लगता है, मेरा बाबा कहते हैं, फील होता है हम बाबा के हैं। बाबा के बच्चे बनना बहुत आसान है, हम कह सकते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, परंतु स्टूडेंट बनना, उसमें क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, नियम चाहिए। रोज की दिनचर्या में हम सुबह उठकर के स्टडी करते हैं, आलस्य को भगाते हैं, उसके लिए नियम है, बाबा ने नियम दिया है कि सुबह उठो, क्लास करो, ताकि हमारे जो संस्कार हैं वो चेंज हो जाएं। तो स्टूडेंट बनने में मेहनत है, क्योंकि नियमों पर चलना है, परंतु योद्धा बनने में बहुत कम है जो योद्धा की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बनना मीन्स नियम पालन करना। तो पहला है बाबा का बच्चा, दूसरा है स्टूडेंट विद्यार्थी, और तीसरा हो गया योद्धा। लेकिन हमारी उन्नति सभी में है, हम बाबा के बच्चे हैं तो प्यार का अनुभव है, विद्यार्थी हैं तो नियमों पर चलते हैं, जीवन में नियम आते जाते हैं, और योद्धा हैं तो अलर्ट रहेंगे, मन को स्ट्रांग बनाएंगे, पावरफुल, और माया पर जीत। चौथी बात है हमारी उन्नति की, जो बाबा कहते हैं रोज की दिनचर्या में, कि आप अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाओ लेकिन सफल करो। मान लो मेरा मन व्यर्थ सोचता है या बोल में पर चिंतन हो जाता है, तो ये उन्नति की निशानी नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार एक्शन में आ गए, हाँ कर्म में आ गए। तो इसलिए पर चिंतन के बदले स्वचिंतन, स्वचिंतन के लिए बाबा कहते जितना हो सके अंतर्मुखी बनो, कम बोलो, अंदर अपने को देखते रहो। हम मान लो कहां पर 50 शब्द बोलने हैं, तो 50 शब्द के बदले कितने शब्द बोलें? 5 शब्द। जितना कम बोलेंगे, कहते हैं ना बाबा मुरली में, एक चुप 100 सुख, है ना, कि जितना हम कम बोलेंगे उतना हमारी एनर्जी व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि जास्ती सोचेंगे, जास्ती बोलेंगे, तो बाहर मुक्ता में आ जाएंगे। तो बाहर मुक्ता उन्नति का साधन नहीं है, उन्नति का साधन कौन सा हो गया? अंतर मुक्ता, स्व चिंतन, कि मैं बाबा का बच्चा हूं, ईश्वरीय विद्यार्थी हूं, और मैं योद्धा हूं, युद्ध के मैदान पर हूँ। मुझे कोई भी प्रकार के पुराना स्वभाव संस्कार जो है उसको खत्म करना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको कौन रुकावट डालता है हमारी उन्नति के लिए। हरेक के अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। तो अभी हम अपने को देखें, हमारे कौन से दो अवगुण हैं, विशेष विशेष अवगुण, वो हमको अपने लिए जानना बहुत जरूरी है। और हमारे अंदर गुण कौन से हैं विशेष दो, वो जानना भी जरूरी है। क्योंकि जब अवगुण आ गए मन में, विचार के रूप में, बोल के रूप में या व्यवहार के रूप में, उस समय उन्नति नहीं हो रही है। तो वो जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बार बार पुराना स्वभाव संस्कार आएगा, अवगुण आएंगे, तो हम सोच रहे हैं हम तो उन्नति कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार आते रहते हैं हमारे व्यवहार में, तो वो उन्नति नहीं है। तो आप सोचो अपने मन के अंदर कौन से मेरे दो गुण हैं और कौन से मेरे दो अवगुण हैं। गुण तो हैं, सभी में हैं, लेकिन कम से कम दो तो हम सब में होंगे, ज्यादा तो होंगे ही होंगे, लेकिन अभी ये सोचो कितने दो दो अवगुण और दो गुण। आप सोचो अपने मन में कौन से दो अवगुण हैं जो मेरी उन्नति में बाधा डालते हैं। सोच लिया सभी ने? तो कितने प्रकार के पुराने स्वभाव संस्कार हैं, ईर्ष्या करना, अहंकार करना और पुरानी बातों को रिपीट करना, उलहना देना, शिकायत करना, और रोना, किसी कोई जा रहा है आगे उसको नीचे गिराना, विरोध की भावना, ये हमारे पुराने संस्कार हैं। नाराज हो जाना, जल्दी जल्दी कंफ्यूज मूंझ जाना, ये पुराने संस्कार की लिस्ट में आते हैं। इसमें कोई तो होगा सुस्ती, अलबेलापन और जिद करना, सिद्ध करना, ये सब पुरानों में आते हैं। इसमें कोई दो तो होंगे। अभी आप सोचो दो गुण कौन से हैं हमारे अंदर गुण। एक गुण तो बाबा ने कहा हम सब में है कि हमने बाप को पहचाना है, बाबा के बच्चे बन गए, दुनिया से थोड़े विशेष तो हो ही गए। लेकिन और कौन से गुण हैं वो सोचो। गुण भी तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, मीठा बोलना, अंतर्मुखी रहना, सहनशील बनना, किसी की बात है उसको संभाल लेना, पिछली बातें याद ना करना, मन और अंदर दिल साफ रखना, स्पष्ट रखना, अंतर्मुखी बनना, ईमानदार रहना, कितने गुण हैं। कोई गुण तो होंगे ना हम सब में, तो वो याद रखना है कि कौन से अवगुण हैं, कौन से गुण हैं। तो जब अवगुण हमला करे मन में विचार के रूप में, उसी समय मन में ही जब अवगुण आ जाता है सुस्ती का या अहंकार का या कुछ नाराजगी का, उसी समय उसको खत्म करना है, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं। और यदि मालूम ही नहीं पड़ा सुस्ती आ गई या अलबेलापन आ गया या क्रोध आ गया, कोई भी प्रकार का नेगेटिव संकल्प आ गया और हमने उसको परखा ही नहीं, फिर वो आदत बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे उन्नति का साधन है मुझ बाप को याद करो, और किसको याद करो, वर्षे को याद करो। वर्षा माना क्या, बाबा के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसको याद करना। जो बाबा ने हमको ज्ञान गुण शक्तियों का ज्ञान दिया है ना, वो उनको याद करना और बाबा को याद करना, उसको कहेंगे उन्नति। और यदि मन थोड़ी देर के लिए दुख की बातें सोच रहा है उसको कहेंगे अवनति, उन्नति नहीं हो रही, वो तो एकदम मन नीचे आके पड़ा ना। किसी को कोई मार दे, चोट आ जाए, उसका क्या हाल होगा, घाव हो जाता है ना। तो ऐसे ही मन जो है दुख की बात सोचता है तो उस समय उसकी अवस्था एकदम जैसे गिर चुकी है, और बाबा को याद करेंगे तो ऊंची अवस्था, वर्षे को याद करेंगे ऊंची अवस्था, ज्ञान को याद रखेंगे ऊंची अवस्था। लेकिन इसके लिए एक बात है कि यदि हमको उन्नति सदा होती रहे, उसके लिए बहुत बहुत विशेष, अपने सारे दिन में विशेष अटेंशन चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि एक है साधारण अटेंशन, एक है विशेष अटेंशन। बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने ऊपर। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसा हम सोचें सोच लें, जैसा बोलें बोल लें, उस पर अटेंशन चाहिए, बहुत कंट्रोल चाहिए, क्योंकि योग का अर्थ है कंट्रोलिंग पावर। तो हमको अपने अंदर कंट्रोल चाहिए, और पूरा योजना बनाओ आप सुबह से लेकर शाम तक, और कुछ नहीं, कम से कम हम एक 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 दिन में एक बात विशेष करें। हाँ, चाहे योग जास्ती करें उस दिन, या ज्ञान का विचार सागर मंथन करें, कुछ विशेष जरूर करें, क्योंकि कुछ विशेष करने से खुशी बनी रहेगी। रोज की दिनचर्या में हम चलो मुरली पढ़ लेते हैं, योग लगा लेते हैं, लेकिन कुछ विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, अटेंशन नहीं रखते हैं, तो वो साधारण है ना, रोज की दिनचर्या में आ जाता है। लेकिन कुछ विशेष करते हैं तो उसमें हमको खुशी होती है। तो आप विशेष पुरुषार्थ करो सुबह से शाम तक, कोई बाहर दिखावे का पुरुषार्थ नहीं, लेकिन यह हमारे अंदर का पुरुषार्थ कि चलो सारे हफ्ते में एक दिन मौन रहना है, शांत रहना है, बोलना नहीं है, कम बोलना है, बहुत कम बोलना है, एक दिन पूरा ही मौन रखो, एक दिन मुझे पूरा सहनशील बनना है, तीसरे दिन पूरा मीठा बोलना है, चौथे दिन बिल्कुल क्रोध पर जीत पानी है, रोज कोई विशेष पुरुषार्थ चलता रहे अंदर ही अंदर, उसमें क्या होगा, विशेष अटेंशन भी रहेगा और खुशी भी रहेगी और उन्नति होती रहेगी ना। रोज एक तो थॉट लेना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है कि आज मुझे क्या करना है विशेष, वो सुबह 4:45 बजे जब अमृत वेला खत्म हो ना, अमृत वेला खत्म होने लास्ट मिनट ये सोचना है कि आज मुझे सारे दिन में क्या विशेष उन्नति करनी है, वो एक संकल्प ले लो मन में, तो वो संकल्प काम करता है सारे दिन में। और यदि हम अमृत वेला करके उठ के आ गए, कोई विशेष संकल्प नहीं लिया सारे दिन के लिए, तो मन जो है उसी हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन जो हम संकल्प लेते हैं विशेष कि आज ये उन्नति का साधन है मेरा, आज सारा दिन सहनशील बनना है, आज सारा दिन मुझे कम बोलना है, तो वो वाला जो संकल्प है ना मन में, जो जिसके लिए हमने विशेष संकल्प किया उन्नति के लिए, वो सारा दिन वो संकल्प के आधार से हमारी उन्नति होती रहेगी। बाकी तो हम थोड़ा सा आपको समाचार सुनाते हैं, सेवा समाचार जापान का भी, और हमारे साथ एक बहन भी आई हैं, वो भी आपको थोड़ा समाचार सुनाएंगे। मैं विशेष जो हमारे सेवा केंद्र हैं जापान, हांगकांग, फिलीपींस, वहां की सेवा के लिए हूँ, और जापान में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनमें विशेष होता है कि हम नोबल, कर्म अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, परंतु भगवान कौन है, भगवान के प्रति वो प्यार वो नहीं है। आप देखते होंगे कल्प वृक्ष में बुद्ध दिखाते हैं ना, बुद्ध ऐसे बैठा है ना आंखें बंद करके, वो अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति वो प्यार वो नहीं है बुद्ध धर्म में। तो इसलिए बुद्ध धर्म के जो लोग हैं वो ज्यादातर साल में एक दिन जाते हैं मंदिर 1 जनवरी को, वो भी इसलिए कि भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे हैं, बाकी रोज नहीं जाते हैं। रोज जो है वो लोग कर्म ही पूजा है, सुबह सुबह उठ करके भाग दौड़ करके काम करने जाते हैं, सुस्ती नहीं है वहां, इनके धर्म में कर्म ही पूजा है, कर्म करके दिखाओ, कल्चर ऐसा है कर्म करने का, हार्ड वर्किंग, मेहनती लोग हैं। और विशेष जो जापान के लोग हैं उनको भारत के प्रति बहुत प्यार है, क्योंकि बुद्ध धर्म यहीं से गया हुआ धर्म है ना, तो भारत के लिए प्यार है, और योग सीखना चाहते हैं भारत के ही लोगों से, जैसे वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं अंग्रेजों से और योग सीखना चाहते हैं भारत के लोगों से, क्योंकि उनको ओरिजिनल चीज चाहिए। और तीसरा, उनको बहुत अच्छा लगता है ये राजयोग, क्योंकि यहाँ परिवार का प्यार मिलता है। उनकी लाइफ स्टाइल में प्यार नहीं रहा, क्योंकि काम काम काम, कर्म कर्म कर्म, टाइम ही नहीं है बैठ करके हम एक दूसरे से लेन देन करें। तो पारिवारिक प्यार उनको राजयोग ब्राह्मण परिवार से मिलता है। और तीसरा, वातावरण की शुद्धि है ना, बाबा के घर में तो शांत वातावरण, शुद्ध वातावरण, उससे उनको सेफ्टी लगती है, सुरक्षा मिलती है। क्योंकि घर में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, उनका प्रभाव पड़ता है ना नेगेटिव का। अब सेंटर पे आएंगे तो शुद्ध और शांत वातावरण, उनको अंदर से सुरक्षा महसूस होती है। तो दैवी परिवार का प्यार और शुद्ध शांत वातावरण, और तीसरा, क्योंकि बुद्ध धर्म में निर्वाण की बात आती है ना, निर्वाण, निर्वाण धाम, निर्वाण वाणी से परे। तो इसलिए इनको आप कहो 2 घंटे योग में बैठने, वो सीधा ऐसे बैठ जाएंगे, निर्वाण की स्थिति तक तो पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा से मिलन कैसे मनाना है, संबंध कैसे रखना है, वो प्यार का अनुभव कैसे करना है, वो फिर राजयोग द्वारा मिलता है। वैसे वो 2 घंटे आप उनको को बैठ जाओ, बैठे रहेंगे शांति की अवस्था, निर्वाण की अवस्था, वाणी से परे की अवस्था, परंतु वो सुख का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, दिल खोलना है बाबा के साथ, बहुत बाबा से अच्छी तरह से प्यार से बात करनी है, वो संबंध का अनुभव नहीं है उनको, वो राजयोग से हम उनको सिखाते हैं। तो इस प्रकार से वहां के लोग जो हैं, जब समझ आ जाता है तो जल्दी खान पान शुद्ध हो जाता है, पवित्रता जीवन में आ जाती है। तो मेहनत नहीं लगती, क्योंकि समझ आ गई, दृढ़ता आ गई और कर्म में आ गया। परंतु जब तक समझ ना आए तब तक संघर्ष चलता है। तो हमने देखा है कि जब वो एकदम समझ जाते हैं तो पूरा उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो जापान में 3 सेवा केंद्र हैं, एक है कोबे, हिरोशिमा, चोक्यो। तो हिरोशिमा जहां बॉम्ब पड़ा था ना दूसरे विश्व युद्ध में, तो वहां पर उनका पीस म्यूजियम बना हुआ है, म्यूजियम। तो वहां सब प्रकार के दिखाए हैं, युद्ध में जब बॉम्ब पड़ा था क्या हाल हुआ था इंसान का, हा? चमड़ी का, चीजों का, वो सब चीजें उन्होंने म्यूजियम में रख दी हैं, ताकि लोग जाएं और रियलाइज करें कि थोड़े सेकंड में बॉम्ब गिरने से क्या नुकसान हो गया था। लेकिन इंसान फिर भी रियलाइज तो नहीं करता है, अभी तो कितने बना के बैठा है इंसान बॉम्ब है। तो उसके साथ साथ हमारा भी पीस म्यूजियम बना हुआ है। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्म योग, योग कर्म करते हुए भी हम योग में कैसे रहें, योग की स्थिति कैसे, हमने भी वहां एक म्यूजियम बनाया हुआ है कि लोग आकर के देखें और शांति, सच्ची शांति क्या है उसका अनुभव करके जाएं। बहुत सुंदर म्यूजियम, बहुत डार्क रूम है जहां हमने पिक्चर्स लगाई हुई है, तो वो लोग बैठते हैं और शांति का भी अनुभव करते हैं और समझ भी लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बुद्ध धर्म के आत्माओं की सेवा है वहां पर। और साथ में और देश हैं वहां, तो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके धर्म में भगवान के प्रति प्यार है, डर है, संबंध है, थोड़ा सा आसान हो जाता है वहां पर बाबा का परिचय देना। क्योंकि जैसे जापान जैसे देश में हम भगवान शब्द नहीं बोल सकते, वो डरते हैं, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना तो वो हार गए थे, इसलिए उनको भगवान में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो अपने एम्परर को भगवान समझते थे ना, तो फिर वो तो हार गए थे, तो इसलिए तब से उनका वो विश्वास नहीं है भगवान में। लेकिन हम लोग यूज करते हैं शब्द भगवान के लिए, बहुत ऊंची शक्ति, एनर्जी, बहुत पवित्र वाइब्रेशन, हाँ, वो बहुत पवित्र आत्मा, सबसे ऊंच प्योर शक्ति है, वो शक्ति यूज करते हैं शब्द, एनर्जी यूज करते हैं, तो उसके थ्रू हम जाते हैं ताकि उनको समझ आ जाए। क्योंकि उनके देश में एनर्जी बहुत यूज होती है ना, टेक्नोलॉजी बहुत एनर्जी यूज हो रही है, तो इसलिए एनर्जी शब्द उनको कनेक्ट करता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की सेवाएं वहां होती हैं। और बाबा का घर जहाँ पर ये आत्माएं आकर के अपना वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो देखकर भी हम खुश होते हैं कि कैसे बाबा ने सभी आत्माओं को शांति, सुख और ज्ञान कैसे बाबा टच करता है। 4 बजे अमृत वेले ऐसे बैठते हैं सभी है ना बाबा के सामने, कैसे बाबा अपना काम बिना बोले है दिल में इतनी ऊंची भावना उनमें इमर्ज कर रहा है, ये देख करके हमको बहुत खुशी होती है। ओम शांति। नीता बेन, हमारे साथ एक बहन जी आए हैं, नीता बहन जी, ये भी विदेश में बहुत साल रहे हैं, इनके पति अम्बेसडर थे अलग अलग देशों में, अपने सिख फैमिली से हैं, तो हमने कहा कि आपको थोड़ा अपना अनुभव सुनाए। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा शरीर का नाम नीता ढोड़ी है और मेरा जन्म लुधियाना में पंजाब में पार्टीशन के बाद हुआ था। एक सिख परिवार में, बिजनेस परिवार था, पालना वही हुई मेरी, वही मैं बड़ी हुई। और बाबा के बच्चे जो विशेष, चाहे वो ज्ञान में नहीं भी होते, उनमें कोई ना कोई विशेषता होती है, जो स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई में, सब चीज में बाबा ने बहुत आगे रखा। हर चीज में मैं खेलती भी थी, 5 बार मैंने अपने स्टेट को, पंजाब को बास्केटबॉल में रिप्रेजेंट किया, प्री एशियंस तक बास्केटबॉल खेला। और थिएटर का, एक्टिंग का शौक था, उसमें भी कभी भी दूसरे नंबर पे कभी भी इनाम नहीं आया, सदा ऊपर ही रहा, फर्स्ट प्राइज रहा। तो ऐसे लुधियाना में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शादी हुई, तो विदेश मंत्रालय में हमारे युगल काम करते थे, तो जैसे ही 3-4 महीने के बाद हमें अफगानिस्तान में गए, अफगानिस्तान के बाद हम हांगकांग में गए। पहली बार वहाँ ब्रह्मा कुमारी का सुना, एक बहुत बड़ा परिवार है, लीला परिवार है, उनके हरी लीला परिवार है, उनके वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था। और दादी प्रकाशमणि जी, हमारी जयंती बहन जी, निक्की बहन जी, इन सबको वहाँ बुलाया गया था, मगर मेरा भाग्य नहीं था उनको मिलने का। मैं बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। हमारे युगल वहां गए, उन्होंने उनको सुना, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें बताया आके। उसके बाद हम भारत वापस पोस्टिंग पे गए, उसके बाद फिर आइवरी कोस्ट में पहली बार गए 81 में, वहां कोई सेंटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसके बाद ग्रीस में गए, तो पहली बार वहां हमारा 1988 में एक हारमोनी ईयर मनाया था, है ना, तो उसमें दादी जानकी और जयंती बहन और ये सब लोग आए थे, तो वहां हमें निमंत्रण दिया गया। हमारे पति वहां अम्बेसडर थे ग्रीस में, तो वहां दादी से पहली बार मुलाकात हुई और जयंती बहन ने भी हमें इनवाइट किया मधुबन आने के लिए, मगर ड्रामा में नहीं था उस समय, हम नहीं गए। फिर उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई अफ्रीका में, जाम्बिया में, जहां मुझे ज्ञान मिला। मुझे मेडिटेशन का हमेशा शौक था, मगर भक्ति में भी मैं बहुत, मेरे को भगवान से बहुत प्यार था। मैंने पंजाबी में एमए किया है और जपजी साहब के ऊपर थीसिस लिखा था, जो एमए के फाइनल के पेपर में होता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स का भी कुछ एक चैप्टर में अध्ययन हुआ था, जिससे मेरे को बाकी धर्मों के बारे में भी कुछ समझ आई। मगर यहाँ जब जाम्बिया में मेरे को मेडिटेशन का शौक था, तो मेरे को एक भाई हमारे घर आते थे, वो मेरे को कहने लगे कि हम आपको, हमारी बहन एक मेडिटेशन सिखाती है, वहां ले चलते हैं। मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किया और कई तरह का इंडियन मेडिटेशन किया, मैंने रेखी भी किया। इसकी वजह यह थी कि मेरे को दुनिया की सभी चीजें भगवान ने दी थी। एक ऐसी फीलिंग थी कि जो 15-20 दिन, एक महीना अच्छा रहने के बाद 3-4 दिन बड़ा डाउनफॉल आता था अपनी मेंटल सिचुएशन में, वो हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती थी, कुछ हार्मोनल भी हो सकती थी, मगर सभी ने ये सजेस्ट किया कि आप मेडिटेशन कीजिए। तो वो मेरे को भाई राजयोगा सेंटर में ले आए, तो मेरे को कुछ राजयोगा की या ब्रह्मा कुमारी की ज्यादा समझ नहीं थी, एक बार इंट्रोडक्शन हुआ था, मगर मालूम नहीं था कि ये क्या करते हैं। मगर वहां का वातावरण और बहनों का प्यार, मेरे को इतना उसने खींचा तो मेरे को ज्ञान बहुत अच्छा लगा। तो जाम्बिया से मैंने इसको शुरू किया 1992 में। मगर मन में एक थोड़ा सा भय था कि इसमें जो पवित्रता की बात है और कई ऐसी धारणाएं हैं जो मैं जिस स्थिति थी हमारी उसमें रहने से मैं किसी को बताऊंगी। लोग मेरे को कहते थे आपके पहले एम्बेसडर की वाइफ वेजिटेरियन थी, हमें बड़ी मुश्किल होती थी। तो मेरे को ये सारी बातें सोच के लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है। मगर मैं सोचती हूँ ये मेरी अपनी वीकनेस थी, इसकी वजह मैं मेडिटेशन भी करती रही, सब कुछ किया मैंने, मगर जो अंदर मेरे चेंज आनी चाहिए थी वो नहीं आई। उसके बाद हम आयरलैंड गए, आयरलैंड में भी सेंटर था, वहां भी मतलब उन्नति इतनी नहीं हुई। फिर 99 में हम लोग जॉर्डन में गए, जो हमारी लास्ट पोस्टिंग थी, वहां भी हमारे युगल एम्बेसडर थे। और हमें बाबा ने एक बहुत खास बाबा का की बच्ची है निक्की बहन करके, उसके थ्रू बाबा ने हमें खींचा। वो ब्रिटिश कनेडियन है वो बहन, और बहुत पावरफुल सोल है वो। तो उनसे जो बाबा ने हमें खींचा तो हमारे को एक ऐसी फीलिंग लगी। उन्होंने एक रिट्रीट रखी थी, 3 दिन की, हिल के ऊपर, हिल टॉप पे। इतना बढ़िया वातावरण था वहां 3 दिन के लिए, और मेरे को एक ही रात वहां रुकना पड़ा, 3 रात मैं रह नहीं सकी। मगर उस एक रात में भी जो मेरे को अपने में चेंज आया, एकदम से जैसे यहां से आप आसमान पे पहुंच जाते हो, वो फीलिंग मेरे को उस रिट्रीट में एक रात रहने से आई। और जब मैं घर में आई गाड़ी में, मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं बिल्कुल हूं ही नहीं गाड़ी में, एक आत्मा आ रही है जैसे गाड़ी में, इतनी बढ़िया फीलिंग हुई मेरे को। तो ये ड्रामा में ऐसे ही था कि जो पहले कुछ साल थे उसमें मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ, मगर मैंने मेडिटेशन बहुत दिल से की और मेरा निश्चय बाबा पे पूरा था, भगवान पे मेरा भक्ति में निश्चय था, वो निश्चय मेरा इसमें भी वैसे ही था। और इससे भी ज्यादा फिर 99 में मैंने फिर बाबा को ऐसे पकड़ा, या बाबा ने मेरे को ऐसे पकड़ा, मैं ये नहीं कह सकती। मगर उसमें क्या हुआ कि अपने में इतनी चेंजेस आई, और उसमें क्या हुआ आपके सारे परिवार में जितने भी लौकिक में रिश्तेदार हैं उनसे आपका रिलेशनशिप बेटर हुआ, घर में शांति आई। और घर में अभी हम वापस हमें आए हुए 2001 में मेरे युगल रिटायर हुए फॉरेन सर्विस से, हमने गुड़गांव में घर बनाया है। तो हमारे जो काम करने वाले सेवाधारी हैं वो भी ज्ञान में चलते हैं। पिछले जो लेडी है वो 4 साल से, और जो उसका युगल है 1 साल से या 6-8 महीने से, वो अगली मीटिंग बाबा की मिलने आ रहे हैं बाबा को। तो घर का वातावरण भी उससे बदला। हमारे युगल पहले ही बड़े अच्छे स्वभाव के थे, पूरे सहयोगी थे, उनमें भी बहुत चेंज आया। और मेरे को अपने में जो अंदर से फीलिंग लगती है वो तो हम सभी भाई बहन जो बाबा के बनते हैं सबको अपना अपना हिसाब से पता है, नंबर वार सब में चेंज आता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। मगर मेरे को बाबा का बनने के बाद इतनी खुशी है एक अंदर, और जिसको भी मिलते हैं एक मन में सद्भावना है हर एक के लिए, और कभी भी ये फीलिंग नहीं लगती कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई आती भी है तो बाबा उसका सदा हमें कोई ना कोई उसका निवारण बताता है। तो इसलिए जो जिंदगी एक जीने का सही तरीका आ गया है, जिससे इतनी मन में खुशी है, और ये दिल करता है कि ये खुशी सब में बांटी जाए। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं भाई बहन, अगर वो नहीं भी ज्ञान में आते हैं तो भी उनको खुशी दी जाए, प्यार दिया जाए, सुख दिया जाए, जो भी हमारे से हो सके। तो इससे अच्छा जीवन तो मैं सोचती हूँ है ही नहीं कोई दुनिया में, किसी का हो ही नहीं सकता। हम इतने भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं जो सभी बाबा के बने हैं, और उसमें से मैं भी एक हूँ। अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, और आप सबसे मिलके मेरे को बहुत खुशी हुई। ओम शांति।